हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और उसमें प्रार्थनाएं भक्तों के द्वारा जो भगवान को की गई हैं उनका श्रवण चल रहा है। कथा को आरंभ करने से हम पहले भगवान श्री कृष्ण बलनाम गौर निताय राधा श्याम सुंदर भगवान नरसिंह देव गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या उनका शुद्ध भक्त बड़ा त्याग से नष्ट की ब्रह्मचारी के रूप में भगवान गौरंगा महाप्रभु के मायापुर धाम की राधा माधव पंचतत्व और नरसिंह देव की सेवा करने वाले उनकी नित्य सेवा में प्रविष्ट हुए हैं, उनके लिए तो ये उत्सव है क्योंकि भगवान की सेवा में प्रविष्ट हुए। लेकिन हमारे लिए वैष्णव से बिछड़ना सबसे बड़ा दुख है संसार में। चैतन्य महाप्रभु के वचनों में संसार में सबसे बड़ा दुख है भगवत प्रेमी भक्तों से बिछड़ना। स्वाज परम पूज्य पंकज अंगरी चरण कमल, पंकज है कमल और अंगरी है चरण, भगवान के चरण कमलों का दास भगवान के चरण कमलों में आज नित्य सेवा में प्रविष्ट हुआ, उनको हम श्रद्धांजलि और हृदय से उनसे कृपा और आशीर्वाद मांगते हैं कि अति उत्तम स्थान मायापुर धाम में अपने प्राण प्रिय भगवान के स्वरूप राधा माधव अश्वखी और पंचतत्व और नरसिंह देव और भक्त समाज के बीच में भगवत धाम में जो आध्यात्मिक जगत में प्रभुपाद जी का स्कान और जो सेवा है उसमें उनको इतना उत्तम स्थान पे शरीर त्यागने का जो ये संयोग बना है, कृपा करें जब तक जीवन है ऐसे निष्ठापूर्वक सेवा कृष्ण भावना अमृत संघ की और प्रभुपाद जी की करते रहें। पंकज अंगरी प्रभु की जय। हरे कृष्ण। हमारा नित्य पांचवें स्कंद के 18वें अध्याय के 19वें श्लोक का आज पाठ करेंगे। 18 श्लोक को कल पूरा किया था जिसमें लक्ष्मी देवी भगवान कामदेव की प्रेम पूर्वक जो सेवा कर रही है और जो प्रार्थना कर रही है संवत्सर के पुत्र और पुत्रियों के साथ, उसका हमने कल श्रवण वर्णन किया था। आज आगे उस प्रार्थना के दूसरे चरण में जा रहे हैं। स्त्रियो वृतस्त्वा ऋषिकेश्वरम स्वतो हयाराध्य लोके पतिमाशासते अन्यम तासाम नते वै परिपान्त्यः अपत्यम प्रियं धन्नायंसि यतो अस्वतंत्राः। स्त्रियां संसार की सारी नारियां व्रत ही जो व्रत रखती हैं, जो पूजा पाठ करती हैं, जो संकल्प लेती हैं, जो उपवास करती हैं, त्वा हे भगवान ऋषिकेश ईश्वरम, इंद्रियों के स्वामी, स्वतो है आराध्य लोके पतिम, आपकी आराधना करते हैं परंतु मांगती हैं लौकिक पति, आशास्ते अन्याम, आशीर्वाद मानते हैं मांगती हैं पति की मांगती हैं लेकिन आपको छोड़ के और किसी की, तासाम नते वही परिपांति, वो जो पति उनको मिलते हैं वो उनका परिपांति, उनका पालन पोषण नहीं कर सकते, उनका रक्षण नहीं कर सकते, केवल उनका नहीं अपत्याम जो उनका संतान है उसका भी रक्षण नहीं कर सकते, और प्रियम और जो उनके और बंधु प्रिय मित्र हैं उनका भी रक्षण नहीं कर सकते, धना और धन का भी रक्षण नहीं करते, आयुष और उनकी आयु का भी रक्षण नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यह तो अस्वतंत्र, वो स्वयं स्वतंत्र नहीं है, उनका अपना जीवन भी परतंत्र है, तो वो दूसरे का, पति का, पत्नी का, पुत्र का, धन का, परिवार का कैसे रक्षण कर सकता है। तो ये प्रार्थना लक्ष्मी देवी कहती है, मेरे प्रिय भगवान आप तो पूर्ण स्वतंत्र सब इंद्रियों के स्वामी हो, इसलिए जो नारियां बहुत बड़े कठोर व्रतों के साथ आपका पूजन करती हैं और आशा करती हैं कि उनको पति मिले जो उनकी इंद्रियों को सुख दे, संतुष्ट करे, निश्चित रूप से मोहग्रस्त हैं, भ्रमित हैं, वो यह नहीं जानती कि उनको जो पति मिलेंगे उनको और उनके संतान को रक्षा नहीं दे सकते, न केवल इतना उनके धन को, उनकी आयु का भी संरक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं काल के अधीन है, अपने फल के कर्मों के फल के अधीन है और प्रकृति के गुणों के अधीन है, और ये जो सभी तीनों है ये सब आपके अधीन है और वो उनके अधीन है, तो उनको कैसे रक्षा कर सकते हैं। हे भगवान ऋषिकेश, आपकी पूजा करती हैं आप जो सारे इंद्रियों के स्वामी हैं, बड़े व्रत धारण करके आपसे पति का वर मांगती हैं, वो पति उनको मिल तो जाते हैं परंतु उनके सपुत्र की, धन की, आयु की रक्षा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बेचारे परतंत्र हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, लक्ष्मी को तो है शुद्ध भक्ति परंतु सामान्य संसार की दूसरी जो नारियां हैं उनकी भक्ति मिलावट वाली है और इसलिए वो बिचारी भ्रमित हैं। वो आपकी पूजा तो करती है और चाहती भी पति है परंतु दूसरा चाहती है, आपको नहीं चाहती पति के रूप में। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में लक्ष्मी देवी रमा दया दिखा रही है सामान्य नारी जाति के प्रति, बड़ी करुणा दिखा रही है। कौन सी नारियों के प्रति? जो भगवान का पूजन करती हैं, आशीर्वाद चाहती हैं अच्छे पति के रूप में किसी पुरुष को पाने के लिए, और ये भी आशा करती हैं कि ये आशीर्वाद ऐसी भगवान हमको दें कि हम अपने संतान के साथ सुखी रहें, हमारे पास धन हो, आयु हमारी बड़ी रहे, स्वस्थ रहें, और जो हमें प्रिय है वो सब बना रहे, परंतु ये सब होता नहीं है। भौतिक जगत में पति मिले या पत्नी मिले वो तो बेचारे एक जीवन के साथी हैं, वो स्वयं ही भगवान के ऊपर आश्रित हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण ऐसी पत्नियों के मिलेंगे जिनके पति अपने कर्मों के फल के कारण उनके पत्नियों का पालन पोषण, उनके संतान का रक्षण नहीं कर पा रहे और उनकी आयु को भी संभाल तो नहीं सकते। तो वास्तव में इसलिए जो सही असली पति है नारी मात्र के लिए वो श्री कृष्ण है, वह परम पति। और गोपियां ही केवल ऐसी मुक्त आत्माएं थी जो इस सत्य को जानती थी, और इस सत्य को जानते हुए उन्होंने भौतिक पतियों को त्याग दिया एक दृष्टि से, और कृष्ण को वास्तव पति के रूप में स्वीकार किया। ये कथा तो आपने सुनी होगी, रास के लिए गोपियों को भगवान ने बांसुरी बुला के बजा के बुलाया, गोपियां गई और भगवान ने कहा आपने देख लिया, वन देख लिया, जमुना देख ली, चांदनी रात देख ली, अब अपने घर जाओ, पति आपके, पुत्र आपके, परिवार आपके, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो गोपियों ने प्रणय गीत गाया और एक उदाहरण वहां गोपियों ने ऐसे प्रस्तुत किया है प्रचलित कथा में। वो कहती है श्री कृष्ण ये बताइए, पतिव्रता स्त्री का पति परदेश गया है, वो पति से अति प्रेम करती है, पति को फोटो घर में रखा है, चित्र है, फोटो है, उसको प्रसाद पहले खिलाती है फिर खाती है, उसको सुलाती है, उसका सब सेवा करती है। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, पतिव्रती पतिव्रता पत्नी को ऐसे करना चाहिए। बोला हाँ, अब एक और प्रश्न पूछती है, उनका पति प्रदेश से आया है, दरवाजे के ऊपर खड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है, और ये जो फोटो पति है उसकी पूजा कर रही है, अब पति पत्नी का धर्म क्या है, फोटो की पूजा करे कि असली पत्नी आया है उसके लिए दरवाजा खोले। तो भगवान ने कहा असली पत्नी आ गया है तो फोटो की पूजा करने की जरूरत क्या है। बोला यही तो हम आपको कह रही हैं कृष्णा, अभी तक हम माया की मूर्ति पतियों की पूजा कर रही थी, अब आज आपने दरवाजा खटखटाया, बांसुरी में हमारा नाम कहकर हमको बुलाया है, तो अब हम आपके पास बैठे हैं कि वापस वहां जाएं। आप ही ने तो निर्णय दिया है कि वास्तव पति आया है तो उसकी सेवा में लगना चाहिए। तो ये यहां प्रभुपाद जी इस भाव को यहां बता रहे हैं। हरे कृष्ण। तो गोपियों को इस बात की अनुभूति थी और गोपियां मुक्त हैं, इस सिद्धांत को जानती हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं वो केवल गोपियों के पति नहीं है, वो तो जगत के पति है, केवल नारियों के नहीं है, पुरुषों के भी पति है, हर जीव के पति है, हर एक को ठीक तरह से बहुत साफ अच्छी तरह से समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही सब जीवों का नाथ है। और भगवत गीता में जीव को प्रकृति कहा गया है, पुरुष नहीं कहा गया है, जीव प्रकृति है, भगवान पुरुष है, और कृष्ण ही, केवल कृष्ण को भगवत गीता में पुरुष कहा गया है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, आप ही भगवान परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र है, परम पवित्र है, आप ही पुरुष हैं, शाश्वत हैं, दिव्य है, आदि देव हैं, अजन्मा है और विभू है, महान है। बहुत सुंदर है कृष्ण, है आदि पुरुष, और जीव है प्रकृति, कृष्ण है भोक्ता और जीव है उनके भोग्य। इसलिए नारी मात्र को भौतिक पति की याचना करे और ये आशा रखे कि वो रक्षा करेगा, अथवा कोई व्यक्ति, कोई पुरुष ये आशा करे कि मेरी पत्नी जो है वो मेरी इच्छा पूरी करेगी, ये एक प्रकार का है तो माया का मोह। पति होने का मतलब है अपनी पत्नी की रक्षा करना, संतान को अच्छी तरह से धन के द्वारा उनका शिक्षण रक्षण पोषण सब करना और उनको सुरक्षा देना। भौतिक पति ये सब करना कर सके ये संभव नहीं है, क्योंकि वो बेचारा अपने कर्मों के ऊपर आश्रित है। कर्मों में लिखा होगा तो कुछ मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अगर कोई बहुत बड़ा घमंड से अहंकार से ये सोचता है कि मैं पत्नी की रक्षा कर लूंगा, तो वो असल में माया में है, मोहित है। कृष्ण ही केवल एकमात्र नाथ हैं, पति हैं। तो भौतिक स्तर पे जो संबंध है स्त्री पुरुष का, वो कोई परम स्तर के ऊपर नहीं है, वो भौतिक स्तर के ऊपर, वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट कृष्ण के साथ संबंध है नित्य। हमारी इच्छा है विवाह करने की, कृष्ण बड़े दयालु हैं, हमारे को एक नाम का पति मिल जाता है पत्नी को, और पति को पत्नी मिल जाती है, और एक दूसरे की ओर संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ईशो उपनिषद में लिखा है तेन त्वेकता भुंजी था, भगवान सबको उनके भाग का जो उनके कर्मों के जो उनका कोटा है वो दे रहे हैं, जो उनका हिस्सा है वो दे रहे हैं, परंतु जीव है तो शक्ति, और शक्ति है का मतलब पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है, वो तो शक्ति है तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। केवल कृष्ण ही पुरुष है। ये एक तथा कथित एक दो जगह ऐसी बा कथा चलती है। एक तो कहा जाता है मीराबाई जीवा गोस्वामी से मिलने के लिए आना चाह रही थी, तो जीवा गोस्वामी ने कहा मैं नारी से नहीं मिलूंगा। तो कहते हैं मीराबाई ने कहा कि मैंने सुना एक ही पुरुष है वृंदावन में, कृष्ण है, दूसरा कहां से आ गया। तो उस समय जीवा गोस्वामी ने कहा मैं इससे मिल सकता हूं जो केवल कृष्ण को ही पुरुष मानती है। तो ऐसे एक और भी कथा कहीं है मेरे ख्याल में कुछ गुरुजनों के विषय में। तो एक पुरुष है जिसके लिए अब चेतना चरितमृत से प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, यारे ऐछे ना चाहे से ही तैछे करे नृत्य। जिस प्रकार स्वामी कृष्ण नचाता है इस प्रकार संसार सारा नृत्य करता है। वास्तव में पति कृष्ण है, और जितने पति पत्नियां हैं वो जैसे नचाता है ऐसे नाचती। इंद्रिय भोग के लिए पति पत्नियों का आपस में मिलन होता है, भले होए, परंतु इंद्रियों का स्वामी तो ऋषिकेश भगवान है, इसलिए वास्तव में तो वही पति है। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। इसका भाव ये है कि वास्तव प्रेम पति पत्नी दोनों कृष्ण से करें और अपने आप को कृष्ण के सेवक माने। पति माने के पत्नी मेरी सेविका है तो ये माया है, और पत्नी कहे पति मेरा रक्षण करेगा तो ये भी माया है, और दोनों कहेंगे हम कृष्ण की सेवा के लिए हैं, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा पालक है, वही हमारा मालिक है, तो कोई समस्या नहीं। वास्तव में हमारा नाथ कृष्ण है, हमारा स्वामी कृष्ण है, ये समझना चाहिए। आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। सवई पति स्यात अतु अकुतो भय स्वयं समन्तत पाति भयातुरं जनम स एक एवेत अर्थमिथो भयम् नैवात्म लाभाद् धीमन् यते परम्। सवई पति वो ही वास्तव में पति है, स वही पति, वही वास्तव में एकमात्र पति है। स्याद अतुक भय स्वयं, जो भय से मुक्त करे, निर्भय करे, स्वयं वो निर्भय करे और अपने ऊपर आश्रित हो, अपने में परिपूर्ण हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, समंततः पूर्ण रूप से पाति, पाति का मतलब भरण पोषण करना। पति कहते हैं जो अपनी पति का, पत्नी का, परिवार का भरण पोषण करे उसको कहते हैं पति। पात्यते इति पति, रक्षते इति पति। और पत्नी कहते हैं जो पति को पतन से बचाए, भौतिक संसार में पति को भोग में पथ भ्रष्ट होने से बचाए उसको पत्नी कहते हैं। पत्नी का अर्थ है पति का को पतन से बचाने वाली, और पति का अर्थ है पत्नी का भरण पोषण पालन रक्षण करने वाला। भय आतुरम, जो पति स्वयं भयभीत है जन्म सा, और ऐसे लोग जो इसलिए एक इतर था मिथ्या, वो एक दूसरे से मिथ्या मतलब आमने सामने एक दूसरे से भयभीत है, भय करते हैं। आत्मलाभाद, आपको प्राप्त नहीं कर सकते, अधि बहुत बड़ा, और संसार की चीजों को बड़ा मानते हैं। केवल एकमात्र वो जो स्वयं भय से मुक्त है, अभय, जिसको कोई भय नहीं, खौफ नहीं, डर नहीं, परंतु केवल स्वयं अभय नहीं है, जिनको शरण देता है उसको भी अभयदान देता है, भौतिक बंधन से मुक्त करता है, वही वास्तव में पति कहलाने का अधिकारी है। इसका मतलब पति वो है जो रक्षक हो और निर्भय दान दे, भय से मुक्त करे। इसलिए हे मेरे स्वामी, आप ही केवल एकमात्र पति हैं, और कोई व्यक्ति पति कहने का अधिकार ही नहीं रखता। अगर केवल आप एक पति नहीं होते तो आप भयभूत होते, दूसरों से भयभीत होते। इसलिए जो वैदिक जो शास्त्रज्ञ हैं, वेद को जानते हैं, वो केवल आपको एकमात्र अपना स्वामी नाथ मानते हैं, और आपसे अधिक और अतिरिक्त कोई रक्षक नाथ पति नहीं हो सकता। भगवान स्वभाव से ही, भगवान आप निर्भय हैं और सब जीवों का रक्षक है, आप ही केवल एकमात्र नाथ हैं। पर नहीं तो संसार में तो एक दूसरे, एक व्यक्ति दूसरे से भयभीत है। तो कोरोना काल में ऐसे है कि अपना पति पत्नी से डरती है, पत्नी पत्नी से डरता है, पता नहीं ये बाहर से आया कहीं कोरोना न लाया हो। ये भय तो इतना लगा हुआ है कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं है तेरे दिमाग में। ये क्या संसार, कैसा माया काम कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। न पुत्र के ऊपर विश्वास है, न पत्नी के, न पति के, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। ये छोटी बीमारी ने ऐसी स्थिति बना रखी है। इसलिए बुद्धिमान कहते हैं आपको ही प्राप्त करना श्रेष्ठ है, आपका ही शरण लेना चाहिए। चक्रवर्ती पाद कहते हैं वो नारी जो पति की मां की माना नहीं जानती, अर्थ नहीं जानती है, वो जानती नहीं है पति का अर्थ। जो पत्नी का आप रक्षण नहीं कर सकता है वो पति कैसे कहला सकता है। जो स्त्री की रक्षा, इसलिए रामचंद्र के चरित्र में कहा था, भगवान ने कहा पत्नी ग्रहण करो तो उसकी रक्षा के लिए सात समुद्र पार जाने के लिए तैयार, रावण से लड़ने के लिए साहस होना चाहिए, तब पत्नी ग्रहण करने का अधिकार है। वैसे भगवान तो नाथ है, पति है ही, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं कर सकते। पहले तो वो किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए, ऐसा तो व्यक्ति केवल एकमात्र आप है भगवान। अगर पति का दूसरा अर्थ लें, इतर अर्था, ये श्लोक में शब्द है इतर अर्था, ये दूसरा अगर अर्थ लें तो फिर जितने हमारे नेता हैं, जितने जनता के रक्षक अपने आप को मानते हैं, वो तो एक दूसरे से भयभीत है। अब देखें नेता लड़ते हैं इलेक्शन में, वो जीतेगा वो हारेगा, एक दूसरे से भय करते हैं, तो आपकी रक्षा करने चाहते हैं और स्वयं भयभीत है, कैसे करेंगे रक्षा। और इसी के कारण सारी प्रजा ऐसे नेताओं से भयभीत है, तो ये कोई रक्षा तो हुई नहीं। तो शास्त्र ये कहते हैं आप ही आत्मलाभ हैं, आप परमात्मा, आप परम पुरुष भगवान ही हमारे जीवन का वास्तव लाभ है। और जो भी प्राप्त हो संसार में, धन हो या पुत्र हो या पति हो या पत्नी हो या घर हो या देश का स्वामी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, आपसे महान नहीं है, ये सब आपसे नीचे छोटे और तुच्छ और स्वयं भयभीत हैं। केवल शब्द पति आपके लिए उपयोग किया जा सकता है, एकमात्र आप ही पति है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं पति या अभिभावक या रक्षक, उसका अर्थ यहां स्पष्ट रूप से समझाया गया है। लोग पति बनना चाहते हैं, अभिभावक बनना चाहते हैं, रक्षक बनना चाहते हैं, गवर्नर बनना चाहते हैं, राजनीतिक नेता बनना चाहते हैं, परंतु उस स्थिति और अवस्था और उस पद का, उस पोस्ट का अर्थ नहीं जानते हैं। पूरे विश्व में ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे, पूरे ब्रह्मांड में ऐसे होंगे, किसी समय अपने आप को पति, चाहे वो के सभा का पति हो, चाहे वो देश का पति हो या राजनीतिक पति हो, ऐसे अपने आप को माना होगा। परंतु काल के प्रभाव से, समय के गुजरने के साथ काल भगवान का प्रतिनिधि है, उनको उनके पद से हटा दिया, वो वहां नहीं रहे। ये तो बहुत अद्भुत उदाहरण संसार में मिलेंगे। लोग सब उनसे प्रेम करते हैं, उनको देखना चाहते हैं, एक बार उनसे मिलना चाहते हैं, परंतु समय इतना बलवान है कि जब उनका समय बीत जाता है तो पता नहीं अज्ञात जीवन कैसे वो बिताते हैं, कितना दुख भोगते हैं, अनुभव नहीं किया जा सकता। और जब काल उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है, उनके पद से उनको हटा देता है, तो उनके जीवन भर का जो उन्होंने एक कैरियर बनाया था, जो उन्होंने एक अपना साम्राज्य बनाया था, वो एक मिनट में समाप्त हो जाता है। इसलिए विद्वान कहते हैं, वेदज्ञ शास्त्र को समझने वाले कहते हैं, बाकी सबको सम्मान दो, परंतु रक्षक पालक पति के रूप में, नाथ के रूप में केवल गोवर्धन नाथ को मानो, केवल जगन्नाथ को मानो, गोपीनाथ को मानो, वही वास्तव में एक नाथ है। भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं अहम तुम सर्व पापी भी हो मोक्ष इशामी मा सुचि, मैं आपको सब पापों से, मैं ही आपका रक्षक हूं, मैं ही आपको अपने पास ले जाऊंगा। कृष्ण किसी से भयभीत नहीं है, निर्भय है। और दूसरी ओर सभी कृष्ण से भयभीत हैं। इसलिए एकमात्र कृष्ण ही जीवों को रक्षण दे सकता है, उनका रक्षक हो सकता है। तथा कथित नेता हो या हमारे बड़े अधिकारी हो, निर्देशक हो, वो सब के सब प्रकृति के बस में है। जैसे प्रकृति चलाती है वैसे चलते हैं, वो पूर्ण रक्षा किसी को नहीं दे सकते। वो ऐसे कहते हैं कि हम आपका पालन करेंगे, पोषण करेंगे, रक्षण करेंगे, ये उनका झूठे वचन है, झूठे वायदे हैं। वो अपने केवल मान सम्मान के लिए ऐसी घोषणाएं करते हैं, पर तो ये उनकी बस की बात नहीं। नते विदुस्वार्थ गतिम ही विष्णु, वो ये नहीं जानते हैं सके सबका स्वार्थ और सबका लक्ष्य, सबकी गति, सबका गंतव्य स्थान, सबकी मंजिल विष्णु है, ये नहीं जानते हैं। वास्तव में जीवन में प्रगति, जीवन का परम लक्ष्य केवल एकमात्र भगवान को ही अपना नाथ मानने में है, नहीं तो सब अनाथ है। एक जो कृष्ण को अपना नाथ मानता है वो ही सनाथ है। नाथ द्वारा, नाथ का द्वार है, दरवाजा है, नाथ का दरवाजा है, नाथ द्वारा कहते हैं जहां भगवान श्री गोवर्धन नाथ है। कृष्ण 7 साल का गोवर्धन धारण करने वाला जिस स्थान पे विराजमान है आज विग्रह के रूप में, उस जगह का नाम ही है नाथ द्वारा। वो नाथ के घर का दरवाजा है, वही एकमात्र नाथ है। अपने को धोखा देकर ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को शक्तिशाली कहने का साहस कर रहे हैं, ये राजनेता हो या पति हो या कोई रक्षक हो या अभिभावक हो, उन सबको एक काम करना चाहिए, कृष्ण भावना आंदोलन के प्रचार में लगना जाना चाहिए और सबको कृष्ण की शरणागति की शिक्षा देनी चाहिए कि वही आप सबका स्वामी है, हम आपके सेवक हैं। प्रभुपाद जी यहाँ सलाह दे रहे हैं कि ऐसे जो नेता हैं, ऐसे जो हमारे राजा हैं, उन सबको लोगों को कृष्ण को पति के रूप में, जैसे जयपुर का राजा है अपने राजमहल में भगवान श्री गोविंद देव को विराजमान करके अपने आप को उनका सेवक मानता है। आज भी मंगल आरती में, आज भी का मतलब कोरोना काल को छोड़ के, 500,000 आदमी तो सुबह 4 बजे 5 बजे मंगल आरती में अपने आप आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं। तो राजा ने ये प्रचार करके अपने महल में भगवान को विराजमान किया तो पूरा जगह, पूरी प्रजा उसकी सेवा करेगी। ये राजा का सही कर्तव्य है, यही राजा का सही मार्गदर्शन है नेता का। या तस्य ते पाद सरोरुहारणम् निकाम्येत साखिल कामलं पटा तदेव रासीप्सितं इप्सितो अर्चो अर्चितो यद भग्ना याचना भगवन् पत् तप्यते। या वो जो स्त्री, तस्य जिस इस भगवान का जो सबका पति है, ते पाद सरोरो अहरणम, भगवान के चरण कमल का जो पूजन करना चाहती है, उनको अपने जीवन का आराध्य स्वामी मानती है। निकाम्येत साखा स अखिल काम लंपटा, उसकी सारी कामनाएं अपने निकाम ये तस्सा अखिल कामना, सारी कामना बिना मांगे पूरी हो जाती है। निकाम ये बहुत भर सब सारी इच्छाएं उस स्त्री की अखिल काम लंपटा, भले कितनी भौतिक इच्छाएं क्यों ना हो। तत्व रासीप सितम इप्सितो अरचितो, अर्चन करना भगवान का, भगवान सारी वो उस पूजा करने वाले की आशीर्वाद देके इच्छाएं पूरी कर देते। भगन यांचा, परंतु जिसकी याचना जिसकी मांग भगवान को छोड़ के और किसी इच्छा की है, आपके चरण कमलों को नहीं मांगता है, इसलिए वो तो बेचारा टूटा है, फूटा है उसका भाग्य। भगवान प्रतप्यते, प्रतप्यते प्रकृष्टेण रूपेण तप्यते, पूर्ण रूप से तपता है, दुख भोगता है। बहुत बड़ी अच्छी बात लक्ष्मी देवी कह रही है, कह रही भगवान के चरण कमलों की पूजा मांगो तो आपकी सारी कामना भले दुनिया की हो तो भी भगवान पूरी कर देगा। भगवान को छोड़ के और किसी से कुछ मांग रहे हो तो संसार में केवल दुखी मिलेगा। ये मेरे प्रिय भगवान स्वत ही अपने आप उस नारी की जो आपके चरणों कमलों की पूजा करती है शुद्ध प्रेम से सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। परंतु कोई नारी आपके चरण कमलों का किसी विशेष उद्देश्य से, प्रेम से नहीं, किसी विशेष भौतिक उद्देश्य से पूजा करती है उसकी भी आप इच्छाएं पूरी करते हैं, परंतु अंत में उसका हृदय विद्रीण हो जाता है, दिल टूट जाता है और दुखी होती है, प्रतप्यते। इसलिए आपके चरण कमलों की पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करनी चाहिए। इच्छा तो उसकी भी पूरी होती है, परंतु आगे चल के उसको दुख ही प्राप्त होता है। जो नारी आपके चरण कमलों की प्रेम पूर्वक पूजा करती है उसकी सब इच्छाएं आप पूर्ण करते हैं हे नाथ, आप उस नारी को भी, उस नारी की भी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं जो केवल भौतिक लाभ के लिए आपकी पूजा करती है, परंतु फल के रूप में उसको दुख ही मिलता है। भौतिक इच्छा से पूजा नहीं की जाए, भौतिक इच्छा पूजा में न हो तो भगवान उस भक्त की इच्छाएं अपने आप पूर्ण करते हैं, और इच्छा के साथ पूजा करेंगे तो हम केवल एक ही इच्छा पूरी होगी और वो इच्छा भी अस्थाई, थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी है। बिना इच्छा के करेंगे तो वो स्वामी है तो हमारे दुख को जानेंगे, हमारी आवश्यकता क्या है उस सब का देखभाल करेंगे। और विशेष रूप से वो नारी आपकी पूजन करती है, जैसे गुणों का ऊपर वर्णन करा कर किया गया है, तस्य कोई और उसकी भौतिक इच्छा नहीं है, उसकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती और वो निष्काम हो जाती है। परंतु जो केवल एक कामना के लिए आपकी पूजा करती है उसकी एक ही कामना पूरी होती है, और उस कामना का भोग करने के उपरांत जब वो वस्तु ही पूरी हो जाती है, वो चीज ही पूरी हो जाती है, तो उसको दुख ही मिलता है। वो बाद में निष्काम हो सकती है परंतु पहले उसको सकाम कहा जाएगा। तो यहां एक निष्काम भाव से पूजा करती है, एक सकाम भाव से करती है। निष्काम भाव की सब इच्छाएं पूरी, सकाम वाले की एक इच्छा वो भी अंत में दुखदायी। इसलिए भक्त जो भगवान को चाहते हैं वो सकाम नहीं है, वो निष्काम है। ये है सारांश। जो और चीजें भगवान से मांगते हैं वो दुख ही भोगते हैं। लक्ष्मी देवी यहां कह रही है लक्ष्मी देख रही है कि है तो ये मेरा भी संतान, परंतु इसकी मनोभावना जो है वो प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है भगवान की सेवा के, तो इसलिए उसकी ताड़ना कर रही, उसको कठोर वचन कह रही है। परंतु आगे आएगा सकाम भक्त भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति को अन्य अभिलाषिता शून्यम कहते हैं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम कहते हैं। तो भगवान की पूजा किसी अन्य आशा के साथ और कर्म और ज्ञान को मिला के नहीं करनी चाहिए। कैसे पूजा करनी चाहिए? जैसे भगवान चाहता है, जैसे वेद ने वर्णन किया है, जैसे पंचरात्र विधि में लिखा है। इसलिए नए शिक्षित भक्त को, नए भक्त को कहा जाता है, ये क्या लिखा गया है, ये लाइन लिखी गई है साधन भक्ति। इसलिए नए भक्त को साधन के स्तर पे शास्त्र के नियमों को गुरु के निर्देश में पालन करना चाहिए, ये है साधन भक्ति। और ऐसे वो साधन भक्ति करता रहेगा तो धीरे धीरे कृष्ण में आसक्ति होने लगेगी और उसके हृदय में जो भगवान का प्रेम है वो जागृत हो जाएगा और तब वो साधन भक्ति से प्रेम भक्ति के स्तर पे आ जाएगा। तब उसके मन में कोई और भावना नहीं रहेगी भोग की, भगवान की सेवा के अतिरिक्त। ये है भगवान के संबंध का वास्तविक सही और सिद्ध स्वरूप। अब प्रभुपाद बहुत अच्छी बात लिखी है, जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई, साधन किया, भाव प्रकट हुआ, भगवान में आसक्ति और प्रेम भक्ति हो गई, तो हम भगवान के हो गए, कृष्ण आकर्षित हो गया, क्योंकि प्रेम भक्ति कृष्ण आकर्षणीय है। और जब कृष्ण आकर्षित हो गए तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, फिर भक्त के सारे सुख सुविधा और सुरक्षा, भगवान सारी सुख सुविधा और सुरक्षा, शब्द लिखा है, नीड्स नहीं लिखा है, कंफर्ट लिखा है, आराम आशाइश। अरे कृष्णा, आपका क्या क्या हुआ? अरे कृष्णा
जी, बीच में ब्रेक हो गया था।
हाँ, मैं देखा अभी उसको। ओके, वो बीच में जंप खाया, मेरा किताब भी गुम हो गया और म्यूट भी हो गया। अब ठीक है। ओके, तो यहाँ लिखा है जो हम पढ़ रहे हैं, भाव भक्ति से जो प्रेम भक्ति के स्तर पे पहुंच गया उसकी भगवान कृष्ण आकर्षित उसकी ओर हो जाती है। कृष्ण आकर्षणी प्रेम भक्ति है। तब कृष्ण अपने प्रेम के प्रेमी भक्त के सारे सुख सुविधा, आवश्यकता नहीं लिखा है, सुख सुविधा आराम और सुरक्षा का सारा भार अपने ऊपर उठा लेते हैं बिना पूछे। भक्त को कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप भगवान कर लेते हैं। और यही भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान अपने, भगवान तो सबका पूर्ण रूप से, हाँ, हर एक उसका भगवान पूर्ण रूप से जो भक्ति में लगा हुआ है उसका ध्यान रखते हैं और जो उसके पास है उसकी रक्षा करते हैं और जिसकी आवश्यकता है वो पूरा करते हैं। इसलिए भगवान से कुछ भौतिक चीजें मांगने की आवश्यकता क्या है, उनको सब पता है। ऐसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है कि भगवान ये करो वो करो, वो सब जानता है। इसलिए विश्वनाथ चक्र शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवान से अगर भक्त कोई इच्छा पूरी करने की कामना भी करता है तो उसको सकाम भक्त कहते हैं, उसको सकाम भक्त नहीं कहना चाहिए। और भगवत गीता का ये श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभा, चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। यहाँ ये भजन है, ये शुद्ध भक्ति में नहीं है परंतु शुद्ध भक्ति के दरवाजे पे है। एक तो ये सब सुकृत है, इनका कार्य बड़ा अच्छा है। एक दुखी है और एक धन चाहता है, एक जिज्ञासु है और एक ज्ञानी है। तो इन सब के लिए भगवान ने कहा ये सब महान है। आरत और अर्थार्थी भगवान के पास धन और दुख के निवारण के लिए जाते हैं, परंतु इनको सकाम भक्त नहीं कहा गया है। ऐसे वो लगते हैं फिर भी नए भक्त हैं, अभी अज्ञानी है। भगवत गीता में आगे कहा जाएगा उदार सर्वेति, ये सारे महान है, उदार हैं। तो पहले भले नए नए भक्तों के हृदय में कुछ इच्छाएं हो भी, परंतु समय के साथ भगवान उनका हृदय पवित्र कर देता है इच्छाओं से। इसलिए भागवत में लिखा है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। पुरुषम परम, जो बड़ी दिल वाला है, महान है, जिसकी बुद्धि विकसित है, उदार है, उदार धी है, भले 100 भौतिक कामनाएं हो संसार की, या कोई कामना हो न हो, अथवा मुक्ति की कामना हो, परंतु हर हाल में भगवान का बड़ी तीव्रता से, बड़ी उत्साह के साथ भक्ति करनी चाहिए। कोई भौतिक चीज भी अगर चाहे तो भी भगवान को छोड़ के उस चीज की, उस इच्छा की पूर्ति के लिए और किसी को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। किसी देवता के पास जाएगा तो उसकी इच्छा तो पूरी होगी, परंतु उसको नष्ट बुद्धि कहा जाएगा। कामेष्टे हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमास्ताय प्रकृति नेता असोया। कामनाओं के लिए देवता के पास जाएगा तो वही नियम पालन करेगा देवता की पूजा का, और जैसा उसका स्वभाव होगा वैसे काम करेगा, तो उसका बुद्धि ज्यादा नहीं मानी जाएगी। इसलिए लक्ष्मी देवी कह रही है भक्तों को, सब भक्तों को, जो भगवान को भौतिक इच्छाओं से प्रार्थना करने के लिए आते हैं, और वो अपने अनुभव से कह रही है कि भगवान वास्तव में कामदेव है, सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं, इसलिए कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है, वो सब जानते हैं, वो सब की भौतिक और आध्यात्मिक जो भी कामना है उसको जानते हैं, उसका नाम ही कामदेव है। और लक्ष्मी देव जी कहते हैं हमको तो केवल उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए, बिना किसी हेतु के, बिना किसी उद्देश्य के, मोटिव के। भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं, वो हमारे विचारों को जानते हैं, वो सूंघ लेते हैं हमारे विचारों को, जैसे पास में पड़ा हुआ फूल की खुशबू अपने आप नाक में आ जाती है ना, ऐसे हृदय में बैठा हुआ भगवान हमारे सारे भावनाओं को जान जाते हैं, और समय के साथ वो हमारी जिसमें हमारा लाभ है वो सब इच्छाएं पूरी कर लेंगे। इसलिए पूर्ण रूप से भगवान की सेवा के ऊपर ही अपने जीवन को निर्भर करें, और भगवान को कोई भौतिक इच्छाएं करने की, प्रार्थना करने का समय व्यर्थ न गंवाएं। भगवान सब जानते हैं और सभी प्रेम पूर्वक पूरा करेंगे। मत प्राप्त्याय अजेश सुरा सुराद्यस तप्यंत उगरम तपेन्द्रिय धीयः ऋते भवत्पाद परायणाम नमाम विन्दन्ति अहम त्वदः त्वदा हृदया यतो अजीता। अब लक्ष्मी देवी कहती है मेरी तो सब पूजा करते हैं देवताओं को लेके ब्रह्मा शंकर से, परंतु जो आपका चरणों की पूजा नहीं करते उसके ऊपर मैं राजी नहीं होती। इस श्लोक का भाव ये है, मत प्राप्त है मतलब लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, अजेश एक अज ब्रह्मा जी और एक ईश शिव सुर और सारे देवता जिनमें इंद्र चंद्र वरुण सब है और असुर आदि और असुर भी, ये सारे के सारे तपयन्ते बड़ा तपस्या करते हैं, उग्र तपस्या करते हैं, इंद्रिय धिया उनका आशा होती है उत्तम भोग प्राप्त करने की, परंतु रिते अगर वो आपके भवत्पाद प्रायण, अगर वो आपके चरण कमलों का पूर्ण रूप से शरण नहीं लेते, सेवा नहीं करते, न माम मैं उनको विंदती, उनकी इच्छा पूरी नहीं करती हूं, अहम त्वत हृदय यत अजीत, हे अजीत भगवान मेरे हृदय में आप हैं, जो आपकी सेवा करेगी उनके इच्छा को मैं पूरी करूंगी, इसका अर्थ ये। तो इस श्लोक का पाठ फिर कल करेंगे। हरे कृष्ण। हे अजीत भगवान, भौतिक उच्च भोग के विचारों से जब ब्रह्मा शंकर आदि सारे देव दानव घोर तपस्या करके आशीर्वाद मुझसे मांगते हैं, मैं उनका तब तक सहयोग नहीं करती हूँ, कितना बड़ा कोई क्यों न हो, जब तक वो आपके चरणों की सेवा में नहीं लगता, क्योंकि मैं आपको सदा मेरे हृदय में विराजमान रखती हूँ, इसलिए मैं केवल आपके भक्तों को छोड़ के और किसी के ऊपर कृपा और आशीष नहीं करती हूँ। तो ये तो भाई दुनिया वालों जानो, लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो लक्ष्मीपति को सहस्र लक्ष्मी गोविंद आदि पुरुष की सेवा करो तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी। हरे कृष्णा। यहाँ से कथा आगे कल। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरि बोल। कोई प्रश्न जिज्ञासा नहीं है?
विष्णु जी धन्यवाद।
बोलिए विष्णु जी।
जोशी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हमारे यहाँ जब कभी भी, जैसे आजकल तो कोरोना चल रहा है, कभी भी कोई रिश्तेदार घर परिवार में कोई बीमार होता तो हम प्रार्थना शुरू कर देते हैं नरसिंह देव महाराज भगवान को, और तो ये क्या ठीक है या भगवान अपने आप ही आपके तरह से समझ जाते हैं हमारे दिल की भाव, तो क्या ये ठीक है? हम कहते हैं भगवान ठीक कर दो, इस तरह से प्रार्थना शुरू कर देते हैं हम लोग, तो ये मतलब अपनी एक तरह से मटेरियल।
हमारे मंदिरों में जो भक्त होते हैं कभी वो रोग में है दुख में है तो प्रार्थना ये करते हैं कि भगवान अगर आपकी इच्छा हो और ये आपकी सेवा में या लग सकता है और आप इसको आपकी सेवा में या लगाना चाहते हैं तो आप इनको स्वस्थ कीजिए जैसे आपकी इच्छा हो। तो प्रार्थना का अर्थ ये होना चाहिए कि भगवान की आपकी इच्छा पूर्ण हो, ये व्यक्ति आपका भक्त है, आपकी सेवा कर रहा है, संकट से गुजर रहा है, आप कृपा करके आपकी सेवा में इसको आगे लगाना चाहें तो इनको स्वस्थ कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान को सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा जैसे होती है वैसे ही होता है, और जैसे भक्तों के लिए तो भगवान जो चाहते हैं वही करते हैं। भगवान को प्रार्थना करने का एक भाव है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अलग प्रार्थना करना, भगवान हृदय से आपका आपके मन में ये संकल्प आए कि भगवान ये आपका भक्त है आपकी सेवा में लगा हुआ है, अगर आपकी सेवा आगे इससे अच्छी, जैसे प्रभुपाद जी जब स्वस्थ नहीं थे तो उन्होंने अपने भक्तों को कहा नरसिंह देव को प्रार्थना करो कि हमारे गुरु ने अभी काम पूरा नहीं किया है, उसकी हमको ज़रूरत है। ऐसे 67 में प्रभुपाद जी के जब हृदय रोग हुआ तो सब भक्तों को प्रभुपाद ने कहा, नरसिंह देव को कहो कि हमारे गुरुदेव ने अपना काम पूरा नहीं किया है, हमको हमारे को गुरुदेव की आवश्यकता है आपके कार्य को संपन्न करने के लिए, ऐसे प्रार्थना रक्षा के लिए करने के लिए प्रभुपाद ने वहाँ बताया था। तो ऐसे भक्त नरसिंह देव की प्रार्थना करते थे और कहते थे जैसे आपकी इच्छा हो आपका भक्त आपके कार्य को पूरा कर सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके, तो हमारे साथ रहना आप चाहते हो तो रखो। परंतु भगवान हमारे हृदय से ऐसे जबान से नहीं कहें, हृदय में भी विचार करें कि इसके प्रति भगवान कृपा करो, तो भगवान उसको भी जान जाते हैं, मान जाते हैं। फिर भी भगवान परम स्वतंत्र है, वह जो भी करें उसमें हमको फिर भी खुश रहना चाहिए, संतुष्टि फिर भी हमारी उसमें होनी चाहिए। ये बिल्ली किसके घर में है? ओ अच्छा, तो ये तो अभी साधु तो नहीं है, बिल्ली आ गई तो फिर गाय भी आएगी। चूहे को भगाने के लिए बिल्ली मंगाई होगी तो गाय भी आ जाएगी, कोई बात नहीं। हंस गोकुल, गोकुल का हंस है भाई, चलेगा। हरे कृष्णा, सारे सारे जीव भगवान के अंश हैं, उनकी सेवा करो। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
सार्वभौम प्रभु जी की
जय।
राधे
राधे
राधे, जय
जय जय जय की
जय, जय हो, जय
जय गौर प्रेमानंदे,
हरि हरि बोल।
सब एक दूसरे की भक्ति में
विशेष पंकज अग्नि प्रभु जी की
जय जय जय।
एक दूसरे की भक्ति में वृद्धि की प्रार्थना सदा करते रहो, एक दूसरे की भक्ति में वृद्धि होती रहे, सबका भगवान की कथा में मन लगता रहे, ये प्रार्थना सदा करते रहो, ये अच्छी प्रार्थना है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोमल शर्मा, मनोज सक्सेना, नरेंद्र दास, ये तो मेरे ख्याल में वो ये नीलांबर होगा, कमल है। हरे कृष्णा, सतीश,
हरे कृष्णा,
हरे
कृष्णा,
हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम
प्रणाम।
सतीश कौन है? सतीश कौन है? सतीश बंडो, अच्छा सदर्शन, सुदर्शन जी बेंगलोर से है, और राजादा परिवार, हरे कृष्णा, हंस गोकुल जी आए, रुक्मणी चारू है, ओके अनंत। और हमारे शुद्ध सत्व का कैसे हाल है, कुछ समाचार शुद्ध सत्व का? जो भी भक्त है रोग ग्रस्त है उनका निवारण भगवान करे, भगवान की सेवा में लग सके, ये प्रार्थना ठीक है। शुद्ध सत्व का समाचार लेना भाई। हरे कृष्णा,
ठीक है।
हरे